Cosa stai carina?
So cosa vuoi che na?
Beh, cosa stai carina?
Cosa ti piace?
कुछ कहिए ना कुछ ते आखो
कोई गाल करो ना जी
अस्सलाम वालेकुम सामीन प्रोग्राम है कुछ तो कहिए मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज प्रोड्यूसर हमारी गुलरुख हैं और फेसबुक पर हमारे साथ हैं वर्दा खलील تو آپ جو تصویریں دیکھیں گے یا ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھیں گے تو وردا ان کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں مہمان ہمارے ان کے بارے میں میں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ بڑا مشکل ہے کہ 30 منٹ کے پروگرام میں ہم ان کی پوری شخصیت کا احاطہ کر سکیں لیکن بہرحال ہمیشہ دوسرے پروگرام کی گنجائش موجود ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں یا ان سے آپ کو ملواؤں لیجیے یہ سنتے ہیں
1950 میں صدر جمہوریہ نے اپنا آرڈر پاس کر دیا اور اس میں ایک بہت طویل فہرست دی مثلاً لوہار ہے چمار ہیں اور نائی ہیں اس طرح کے کام کرنے والے جو پیشے ور لوگ ہیں وہ ان کے پیشوں کو ان کے پروفیشنز کا کیا کیا نام ہے اس کے اوپر صدر جمہوریہ نے ایک نوٹ لگا دیا کہ شرط یہ ہے کہ وہ ہندو ہوں 1956 میں ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کو جوڑ دیا گیا اور 1990 میں بدھسٹ کو بھی جوڑ دیا گیا تو اب یہ ہے کہ اگر پچھلے کئی صدیوں سے فرض کیجئے کہ میرے آبا و اجداد نائی تھے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہوا سماجی تفریق ہوئی ان کے ساتھ ہمیشہ اور اس کی وجہ سے اب مجھے اونچا اٹھانے کے لیے دی گئی ریزرویشن دیا گیا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے وہ ریزرویشن نہیں مل سکتا اگر میں عیسائی ہوں تب بھی نہیں مل سکتا
تو ہم لوگ دی گاڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے 4 لوگ گجرات گئے تھے وہاں کافی خدمت کی کافی کام کیا
ہم نے کہا کہ ویئر وی آر ٹیکنگ کیئر آف دی میڈیکل ایز ویل ایز فائنینشیل سائڈ فار اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بچے اس وقت یتیم ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں
شاہ رخ خان کو دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے کہ اس کا نام مطلب شاہ رخ خان ہے میرا نام بھی شاہ رخ خان ہے میں 9th standard میں ہوں اور میں بڑا ہو کے کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں گھر کی یاد آتی ہے تو تھوڑی دیر تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں اس کے بعد پھر سب آ جاتے ہیں تو اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ سب ساتھ میں ہی ہیں یہاں پر پہلے مطلب اکیلا پن سا محسوس ہوتا ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں کچھ لوگ کیمپ میں رہ رہے تھے تو زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا نے وہاں سے ان بچوں کو مطلب یہاں پر بلایا تاکہ ان لوگ کی مطلب مدد کر سکے گھر والوں کی
پہلے منہ ہاتھ دھوتے چپلے پہنتے پھر چپلے پہنتے ہوں اور جوتے پہنتے ہوں پر ناچتے چلتے ناچتے بچپن چپلے اتارتے منہ ہاتھ دھوتے کھانا کھاتے
مجھے بہت اچھا لگتا ہے سب پیار کرتے ہیں اور آنٹی اما سب پیار کرتے ہیں مجھے میری دوست سب ہے میری دوست سب ہے سونو آفی مسرت بڑی مسکان بڑی سوافی زیب آفی تمین آفی
ہمیں یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ادھر ہی ہیں ایسے ہی رکھتے ہیں ہمیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں اور ہم کبھی روتے بھی نہیں یہاں پر شروع آئے تھے بس ایک دو دن روئے اس کے بعد نہیں روتے تھے
میرا ایم ہے کہ میں لائر بنوں کیونکہ سب کہتے ہیں کہ لائر جھوٹے ہوتے ہیں بٹ میں ایک سچی ایماندار لائر بن کے دکھاؤں گی پھر سب کہیں گے دیکھو یہ ہے لائر
ہوٹو کو کر کے گول سٹی بچا کے بول
انکل نے کہا ہے کہ اگر تم بڑی ہو جاتی ہو کچھ بن جاتی ہو تو ہم تمہاری شادی بھی کروائیں گے
انشاءاللہ
تو ہم لوگ کوئی یہ اسے 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 کما اسے یہ کہا کہ ہم لوگ کما سکتا ہوں تھوڑا بہت تو اگر عید لوگ بول رہے ہیں کہ ایک دن میں 200 روپے بھی 150 روپے میں بھی بس نہیں ہو رہا ہے تو 1 کلو گوشت بیچ رہے کہ 200 روپے بول رہے ہیں तो 10 रुपया 200 रुपया में क्या पास होता। तो जगत पंडित सिंह से दिए सही जगत ही है, तो वो लोग बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं।
I guess last year in May, मुझे Zakat Foundation of India ये एक एग्जाम लेने के लिए आए श्रीनगर। मुझे भी पता चला कि Zakat Foundation of India का एक एग्जाम हो रहा है और वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग को स्पॉन्सर करेंगे, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी। एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुई, तो उनकी वजह से ही इनफैक्ट आई केम टू दिल्ली।
इसमें तो हम यही करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए वी सेलेक्ट एकेडमिकली बेस्ट स्टूडेंट्स।
तो फिर मैं जम्मू आ गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो जम्मू में थोड़ा मुझे कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वहाँ से मेरे दोस्त ने एक अलीगढ़ में एक यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एकेडमी है तो उसके बारे में बताया। तो एमए हिस्ट्री करने के दौरान ही मुझे ZFI के बारे में पता चला कि ये स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट्स को।
तो सामीन, जैसा कि मैंने कहा था, आपने अंदाज़ा किया होगा कि फेरिस्त बड़ी तवील है। बहरहाल हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, और बाकी सामीन को भी बहुत बहुत सलाम, रमजान की मुबारकबाद
हमारी तरफ से, यानी हम सब की तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब, मैं हैरान थी, मतलब जब मैं कुछ अपना होमवर्क कर रही थी आपके इस प्रोग्राम के लिए, कश्मीर के जो शाह फैसल हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की पहली, और मेरा ख्याल है ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मुसलमान लड़के ने पहली पोजीशन हासिल की है सिविल सर्विस के।
नहीं, तारीख पे तो नहीं हुआ है, ये चौथा।
नहीं, कश्मीर की, मेरा मतलब कश्मीर, नहीं नहीं कश्मीर की तारीख, जी 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 कश्मीर की तारीख में। और फिर ऐसे हालात में जब वहाँ बदमनी है, तो एक बहुत बड़ी खिदमत है कि उन बच्चों को भी मौका दिया जाए, और भारत भर से इन बच्चों को मौका दिया जाए, खासतौर पर जिनके माली हालात भी अच्छे नहीं है। तो इस काम के बारे में तो हम सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ये बताइए, मुझे सर सैयद अहमद खान का ख्याल आ रहा था जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आप भी एक बहुत बड़ा मिशन लेके उठे हैं, तो इसकी वजह क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, या बचपन से ही आपके घर का माहौल इस तरह का था?
जी नहीं, बचपन से ही हमारे घर का माहौल ऐसे ही था। हमारे वालिद साहब मरहूम बहुत अच्छे बड़े वकील थे पाए के, और दीनदार आदमी भी थे, लेकिन ये कि साथ साथ मैंने उनको देखा कि दो काम उनसे सीखे मैंने बहुत बचपन से। एक तो वो एक चैरिटी चलाते थे, खुद ही एक अकाउंट खोल लिया था अपना। अच्छा। जाति चूंकि बहुत मानते थे लोग उनको, तो वो लोग कहते थे कि भाई अगर आप मुझसे ना पूछें कि मैं क्या करूंगा तो आप मुझे इतने पैसे दे दी। वो अर्ली 60s में की बात है, तो वो उसमें फिर गरीब लोगों की इंडिविजुअल तौर से मदद किया करते थे। वो किसी को जाड़े में कोट सिलवा दिया, स्कूल की फीस देती वगैरह ये सब।
अच्छा।
दूसरी चीज ये कि वो इतवार के दिन ही छुट्टी खाली होती थी कोर्ट्स की, लेकिन वो इतवार के दिन सुबह ही निकल जाते थे, और आजाद इंटर कॉलेज बहराइच उन्होंने बनाया था, वहाँ वो जा करके और कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, उसको सुपरवाइज करना, ये वो। तो इदारा साजी ये दोनों काम उन्होंने तभी से किए थे, तो आप समझ लें एक तरह से मेरी गुट्टी में ये दोनों काम पड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर जब बड़े होते गए, और मेरी पोस्टिंग जद्दा में भी हुई थी एक बार, मैं वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी इंचार्ज था हज का, हिंदुस्तानी इंचार्ज का, उसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेटर था पंजाब बोर्ड का। तो मुझे ये लगा कि जो इस्लाम के जो सतून हैं 5 अदद, उसमें से हज भी मैनेजमेंट हो रहा है किसी हद तक, काफी हद तक, और नमाज का भी इंतजाम है, और लाखों मस्जिदें हैं, और हर जगह एक मस्जिद होता है, कमिटी होती है, वक्फ बोर्ड है वगैरह वगैरह, लेकिन ज़कात को मैं समझता हूँ कि वो सबसे अहम है, लेकिन उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो हमने सोचा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जब सच्चर कमेटी के लिए OSP बनाया मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी ऑन मुस्लिम्स 2004 में, तो उसकी जब रिपोर्ट पेश हो गई, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो काफी इंस्टीट्यूशनल हो करके ही एम्पावरमेंट का काम करना पड़ेगा कम्युनिटी के लिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में जब मैंने कह रही थी मैं कि पहले थे, जब मेरा ख्याल था कश्मीर से पहले, तो आपने कैसे पहले 4 और स्टूडेंट्स ने पोजीशन हासिल की, तो चूंकि आपका अपना ताल्लुक है सिविल सर्विस के, आप एक बहुत ही कामयाब अफसर हैं और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे से आपने रिटायरमेंट लिया अर्ली, तो क्या
पोजीशन डिप्टी ने चीफ कमिश्नर
के
शुरू में हुए थे।
अच्छा, तो क्या वो पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में से आप भी एक थे?
जी नहीं मैं नहीं
था। अच्छा
मैं नहीं था, लेकिन और मुख्तलिफ वर्षों में नूर मोहम्मद हैं और जावेद उस्मानी हैं और आमिर सुबहानी हैं, इन सब लोग दे स्टूड फर्स्ट इन इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स।
अच्छा
और ईशा फैसल चौथे थे।
अच्छा तो डॉक्टर साहब ये हमारे प्रोग्राम जो कि फेसबुक पर लाइव जाता है तो बहुत सारे लोगों ने आपको खुशामदीद कहा है और वो इस प्रोग्राम में लाइव सुन भी रहे हैं। मैं कुछ नाम ले दूं। शौकत अहमद पारे ने कश्मीर से कहा है कि कुछ तो कहिए कि जो थीम है शुरू में उसमें हमारी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कश्मीर में, और ये दुरुस्त आपने कहा शौकत, तो कश्मीरी ज़बान में भी ये शामिल होना चाहिए ज़रूर। आपने निशानदेही की है, मैं ज़रूर कश्मीरी ज़बान में शामिल करूँगी। और आपको सुन के जैसे कि आप अंदाज़ा करोगे कि डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम है जो तालिब इल्मों को ज़हीन तालिब इल्मों को तैयार करने से मुतालिक है तो उसका एक इम्तिहान कश्मीर में भी होता है। डॉक्टर साहब किन चार जगहों पे होता है? एक तो कश्मीर है, उसके अलावा कहाँ कहाँ?
दिल्ली में, श्रीनगर में, और केरला का मल्लापुरम है, कोचिन से मिला हुआ ट्विन सिटी है वहाँ, और कलकत्ता, इन चार जगह तो होता ही है। और भी हम जहाँ पर डिमांड अगर आ जाए तो 300 बच्चे करीब अप्लाई कर दें ऑनलाइन तो हम वहाँ और एग्जाम कर सकते हैं, पहले किया भी है।
अच्छा अच्छा, इसके अलावा अब्दुल्ला करीम, राजा रब नवाज, अलाव हाशमी और कई लोगों ने और भी आपको खुश आमदीद कहा है। मैं
शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
जैसे कि हमने शुरू में झलक सुनवाई, मतलब एक आपका प्रोग्राम है जो वो बच्चे जो गुजरात के फसादात में यतीम हो गए उनके उनको आप लेकर आए, तो सिर्फ वही बच्चे हैं यतीम खाने में या कोई भी बच्चे जो जिनको जरूरत हो आप उनको लाते हैं उस यतीम खाने के?
नहीं, पूरे मुल्क के बच्चे हैं, पूरे हमारे 3 यतीम खाने हैं, एक बच्चियों का, इनफैक्ट यतीम खाना हम उसे कहते नहीं है, हम उसका नाम हैप्पी होम रखे हुए हैं।
जी
तो एक हैप्पी होम बच्चियों के लिए है और 2 बच्चों के लिए है, और मुख्तलिफ सूबों के और दिल्ली के और बाकी जगहों के सब जगह के लोग हैं उस बच्चे उसके अंदर जो जरूरतमंद जहाँ जैसा हो।
अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपके फोन में थोड़ा सा शोर आ रहा है, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पास आपका दूसरा नंबर भी है, हम उस पर कॉल कर रहे हैं और उस ताकि हम उस पर देखेंगे कि उस पर कोई बेहतर हमें रिसेप्शन मिलता है। आप स्पीकर फोन पे तो नहीं है हमारे साथ?
जी
स्पीकर पे तो नहीं है आप? अच्छा। नहीं नहीं, मैं कह रही
हूँ मैं तो स्पीकर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कान में लगा हूँ।
अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर जरूर फोन में ही कोई है। अच्छा तो आपने जैसे कि बताया अपने वालिद साहब के बारे में बताया, तो फिर किस साल में आप बहराइच से निकले दूसरे, यानी आप मेरा ख्याल अलीगढ़ आए उसके बाद?
हेलो, पास कर लिया वहाँ से मैंने
जी।
पहले मॉन्टेसरी स्कूल बहराइच में पढ़ा था 5th तक, उसके बाद 12th तक जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा और वहाँ से निकल आया, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स में दाखिला लिया, बीएससी ऑनर्स 3 साल का किया, और उसके बाद आई स्विच्ड ओवर टू पॉलिटिकल साइंस बिकॉज आई हैड टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और पीएचडी ज्वाइन किया, फिर मैं वहाँ लेक्चरर भी रहा, इसी बीच सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा और फिर वो सिलेक्शन अल्लाह का शुक्र हो गया तो ज्वाइन कर लिया मसूरी में, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद जगह जगह पोस्टिंग रही इंडिया में और अब्रॉड।
अच्छा, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, कॉल इन शो है हमारा, नजमा नौशाही हमारे साथ है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इनका सवाल लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एक मिनट को फ़ोन बंद कर दें, आपका दूसरा फ़ोन इंगेज आ रहा है तो हम इसी फ़ोन पे दोबारा मिलाते हैं आपको। तो नजमा आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं?
मैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। सबसे पहले तो रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो।
जी जी आपको।
और आधे रोजे तो गुजर गए और अल्लाह ताला बाकी जो है वो सब आप सब पे रहमतें बरकतें अल्लाह ताला अपनी नाजल करे।
जी, क्या
आज आपने बड़ी अच्छी शख्सियत को मधु किया आपने। हाँ
जी,
और
जी।
मुझे इन लोगों से हमेशा मोटिवेशन मिलती है लोगों को। मैं एक बात अभी ये ऑनलाइन नहीं है लेकिन आप उनसे एक बात जरूर पूछिएगा कि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या ये आगे किसी और को इस काम में उन्होंने ट्रेन किया है या अपनी फैमिली में से किसी को इस तरफ लेके आए हैं?
जी जरूर, बहुत हमेशा की तरह नजमा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो डॉक्टर साहब ये आप आ चुके हैं क्योंकि आपने सुन लिया होगा, नजमा नौशाही है फैसलाबाद से, तो ये पूछना चाहती हैं कि आपके इस काम में आपने किसी और को ट्रेन किया?
जी ऐसा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से सिविल सर्विसेज की तैयारी करके और फिर कामयाब हो जाते हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अच्छा।
बड़े नौजवान सा बच्चे हैं। जी हाँ, दूसरी चीज ये कि हमारे मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ज़कात फाउंडेशन का और सारे शोबे ओवरऑल मेरा सुपरविजन है, लेकिन ये जो शोबा है सिविल सर्विसेज का, इसका नाम है सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज। इसका डायरेक्ट जो है ये इट इज अंडर वन ऑफ माय कोलीग्स। हमारे यहाँ चार वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनको काम बटे हुए हैं। तो सिराज हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इमीडिएट इंचार्ज हैं सिविल सर्विसेज के। और अभी साल भर पहले ही हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अच्छा।
और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये काम आगे इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, और बल्कि हमने इसके इसके जो रूल्स में भी ये लिख दिया है कि इसका जो इंचार्ज होगा वो या तो इमीडिएटली रिटायर्ड सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, या अगर बीच में से छोड़ देता है सर्विस को तो 15 साल की सर्विस कर चुका हो उसके बाद वो हो सकता है। तो लिहाजा ये कि उसकी इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ा बहुत वसी तरीन जितना मुमकिन है वो इसका हमने रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन से बना के रखे हैं, तो आगे क्या था कि आगे 100-200 साल तक आराम से चलता रहे विदाउट एनी हिच।
मुझे इतनी प्यारी लगी बात जो एक बच्ची कह रही थी कि हमसे तो मुमताज अंकल ने कह रखा है कि जब पढ़ लिख लोगे तो फिर तुम्हारी शादी भी करेंगे, और मुझे यकीन है मुमताज साहब की आवाज आई फिर इंशाल्लाह जो उन्होंने कहा तो
वो काम शुरू हो चुका है।
अच्छा हो चुका, अच्छा
तो हाँ, दो तीन बच्चियों की शादियां हो भी चुकी है माशाल्लाह से।
अच्छा।
और जॉब भी लग चुकी है बच्चियों की भी और बच्चों की भी, तो माशाल्लाह से चल रहा है, ठीक है, अल्लाह का एहसान है।
कितने बच्चों की शादी हुई आपके यहाँ से अभी?
तीन की हुई है। बच्चियों की हम जिम्मेदारी लेते हैं, बच्चों की तो नहीं लेते।
नहीं, बच्चों की लेनी भी नहीं चाहिए, वो तो खुशी खुशी खुद कर लेंगे अपनी। तो शाहरुख कहाँ पहुंचे अभी तक?
शाहरुख साहब जो हैं वो अभी तो अंडरग्रेड में हैं।
अच्छा अच्छा, मुझे मतलब सचमुच के नज़र आ जाता है आपको जब बच्चे खुश होते हैं, जब उनसे प्यार किया जाता है, उन बच्चों को शायद सबसे बढ़ के प्यार की ज़रूरत है, और बहुत आपकी टीम इसका मतलब अच्छी है जिसने उन बच्चों को इतना खुश रखा। अच्छा, हमारे साथ हफीज़ साहब हैं, हफीज़ हुसैन साहब जी। हफीज़ साहब जी, वालेकुम सलाम, जरा जल्दी से अगर सवाल पूछ लें अपना।
खालिद उमर नियाज़ी जी दुनिया वाली से बोल रहा हूँ
जी। क्या सवाल है खालिद साहब आपका?
अपना जी ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इतने काम कर रहे हैं, हम तो बड़े सुन के इनके बात से बड़े खुश हो रहे हैं। तो इनसे सवाल ये है कि ये तो पाकिस्तान में भी इस किस्म का सिस्टम चला सकते हैं?
आपको पता है इंडिया की आबादी कितनी ज्यादा है, और मुझे पता है दिल में दर्द होता है सबके, लेकिन हमारे यहाँ अब्दुल सत्तार रेडी साहब ने एक मिशन शुरू किया था और बहुत से लोग इस तरह काम कर रहे हैं। बहरहाल में डॉक्टर साहब आप जवाब दे सकते हैं उनको जो भी देना है।
जी ये तो बात सही है कि पूरी मिल्लत पूरी दुनिया की एक है और सबका हक बराबर का है और सबका कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुल्क इसीलिए बने, हालांकि जो नेशनल बाउंड्रीज हैं उसकी कोई बहुत खास अहमियत नहीं है, इसलिए कि जो इंसानी हकूक़ हैं वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं नेशनल हकूक़ के मुकाबले, कौमी हकूक़ के मुकाबले में। लेकिन ये कि आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप भी किसी ज़िले के रहने वाले होंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पर ज़्यादा आपको होगा, और तो अभी हमारे पास जितने लोग हैं उसको भी संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारा प्रोग्राम है कि हम बड़ा एक सेंटर दिल्ली में कायम करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा।
लेकिन ये कि बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें कि हाँ कोऑपरेशन होना चाहिए, दो मुल्कों का, तीन मुल्कों का, चार मुल्कों का, आसपास के मुल्कों का। तो इसमें भी जब खुदा करे अगली जनरेशन जो है वहाँ तक जब बात पहुँचे तो हम इतना अच्छा काम कर चुके हों कि फिर नेशनल बाउंड्री से भी आगे निकले।
अच्छा, हमें इस वक्त फेसबुक पे मैं देख रही हूँ कि जो रोहिंगास हैं जो बर्मा से हिजरत करके लोग आए हैं और बेचारे बहुत ही मसालिम सह के और बड़ी बदहाली के आलम में, तो उनके लिए भी आपका कोई प्रोग्राम है? क्योंकि जो वीडियो था उसमें कुछ उनकी जो इमदाद की कोशिश है, तो क्या कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए?
हमारे पास तो बाकायदा शायद दुनिया में ऐसा कहीं भी ना हो, जो हमने किया है वो ये है कि एक ज़मीन जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की है वो दिल्ली में ही, वो हमने वक्फ कर दी सिर्फ रोहिंग्यास के लिए ही, और इसका नाम रखा है दारुल हिजरत। और 5 साल से वहाँ पर फैमिलीज जो हैं, बच्चे, औरतें, मर्द सब लोग वहाँ रह रहे हैं, बल्कि बच्चों की तालीम का इंतज़ाम भी हो गया, स्कूलों में दाखिले भी हो गए, वो सब फीस वीस भी हम ही दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशसूबी से चल रहा है। और नेशनल यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस फॉर हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का जो ऑफिस दिल्ली में है, वो लोग हमारे बहुत क्लोज टच में रहते हैं ताकि उनसे भी उनको सहूलतें मिल सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट में भी हमारा जिक्र आ चुका है, होम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ ज़कात फाउंडेशन ये काम कर रही है वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग शोभा, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था ना, बहुत से शोबे हैं, अलग अलग लोग इंचार्ज हैं, वो एक अलग शोभा है और बाकायदा वो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, हमें और जो मैसेजेस हैं मेरे पास, सलीम नास, मुश्ताक खान ने लिखा है कश्मीर हमारा दिल है। ज़ाहिर लोग बहुत खुश हैं कश्मीर से हमारे पास सुनने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एक फीस रखी हुई है, जो अखराजात होते हैं, जो जैसा कि मैंने पढ़ा कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब हर बच्चे को तैयारी कराने में अखराजात आते हैं, तो उसका कितना हिस्सा आप उनसे कहते हैं जो तालिब इल्म है कि अदा करें, और इसकी क्या वजह है?
नहीं, ऐसा है, मैं आपको अर्ज करूं कि हम जो बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, वो जो काबिल तरीन, जो कामयाब तरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं प्रोफेशनली प्राइवेटली रन इन इंडिया, वो सारे के सारे जो बेहतरीन कामयाब तरीन है, वो सब दिल्ली में है
जी।
इसी वजह से हमने दिल्ली में फैसिलिटी कायम की है। अब जो फीस इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती है, वो फीस ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करता है, वो अमाउंट है तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर।
अच्छा,
अब तो और बढ़ गया है, आपने जो उसमें पढ़ा होगा,
मैंने पुराने वाला देखा था, जी
होगा
बिल्कुल।
तो वो डायरेक्टली ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया अपने पास से, जाहिर है अपने पास से क्या है, आज सभी लोग देते हैं इंडिया में, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वो फीस हम डायरेक्टली देते हैं। उसके अलावा जो खर्चा आता है वो होता है हॉस्टल में रहना, तो हॉस्टल भी हमारा, उसके हॉस्टल में जहाँ जहाँ किराए की बिल्डिंग है वो किराया भी हमारा, हॉस्टल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हमारा, किचन हमारा, किचन में कुक हमारा, स्टाफ हमारा, हर चीज़ हमारी। बस खाली बच्चों से हम ये कहते हैं कि आप उन्हीं में से एक वो बना देते हैं मॉनिटर, कि आप लोग रोज तय करो क्या बनाना है, खाने में क्या बनना है, और वो खुद मंगा करके और बनवा लोगे इस कुक से
जी।
वो इतना वो है, बाकी तो जो मेजर खर्चा है वो फीस का है, वो फीस तो ज़कात फाउंडेशन 100% खुद अदा करता है।
अच्छा, क्योंकि मैंने कुछ स्कूलों का, जैसे 1-2 रुपए वाला स्कूल है जिनके खर्चा तो उनका बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये 2 रुपए भी जब वो दे देते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स जो है,
वो जो आप फरमा रही हैं वो हम करते हैं, वो हम ये करते हैं, क्योंकि हमें बड़े तजुर्बात हुए 10 साल के अंदर इस मामले में। शुरू में हमने सब चीज फ्री रखी थी, लेकिन अब हम ये करते हैं कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होना है बच्चे का सिलेक्शन के बाद, तो उससे पहले तो हम कहते हैं भाई एफिडेविट भरो, ये करो वो करो, सर्टिफिकेट सारे हमारे पास ओरिजिनल रख दो। उसके अलावा भी हम एक अमाउंट 26,000 रुपए का है वो उससे जमा करवा लेते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसमें से डिडक्शन हो जाएगा।
अच्छा,
वो तय होता है कि 24 महीने के बाद वो अमाउंट वापस हो जाएगा।
अच्छा,
नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मई जो है उसमें वापस हो जाएगा। उसके अलावा बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम उससे कहते हैं 2,000 रुपए हॉस्टल की फीस है पर मंथ, और तुम 6 महीने की, साल भर की इतनी पहले से ही जमा कर दो। लेकिन ग्राउंड लेवल की बात यह है कि हार्डली एनीबॉडी डिपॉजिट्स, उसको भी कुछ नहीं कहते,
उन्हें इत्मीनान है,
वो रूल है ऐसा,
उन्हें इत्मीनान हो गया है कि डॉक्टर साहब का दिल बड़ा नर्म है, कुछ नहीं होगा अगर वो जहीन है तो उनका दाखिला होना ही है।
अब होता यह है कि हम बच्चों को खूब डांटते रपटते हैं, नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ो यो वो, और एक बच्चे को तो हम निकाले दे रहे थे, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया उसकी, इंडिया में 8वीं पोजीशन आ गई,
बताइए।
डर लगता है किसी के खिलाफ एक्शन
लेते,
एक्चुअली 1.5 साल में इतना पढ़ जाते हैं, मन जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से लग जाते हैं।
आपका तरीका इतना जबरदस्त है जो सिलेक्शन का है ना, कि उसमें गलती का इम्कान नहीं है, जिस तरह छान फटक के आप बच्चों को लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, मैं बस यही 2 लूंगी, अब बाकी को नहीं लूंगी। आप बहुत मुख्तसर, हाफिज हुसैन अपना सवाल पूछिएगा कश्मीर से। जी हाफिज साहब,
अस्सलाम वालेकुम। जी, मोहम्मद हुसैन साकिब बात कर रहा हूँ।
वालेकुम सलाम भाई जी, क्या सवाल है आपका?
شہناز عزیز صاحبہ، آپ کو سب سے پہلے مبارک رمضان مبارک، پھر مبارک پیش کرتا ہوں
جی.
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے تو سوال کیا، میں ایک ہی شعر میں جو ہے وہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا.
بہت خوب، بالکل صحیح آپ نے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، ہمارے محمد طارق چکتائی صاحب دوسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ. جی طارق چکتائی صاحب، جلدی سے سوال پوچھ لیجئے، بلکہ ہم اب مزید نہیں لیتے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بالکل وقت کم رہ گیا، میں نہیں چاہتی کہ آپ سے بات نہ ہو. اچھا، ہمیں ایک صاحب نے جن کا نام فاروق بھٹ ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے جو کشمیری طالب علم ہے، لیکن میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ وہ سوال لکھ دیں، لیکن انہوں نے سوال لکھا نہیں تو وہ ہم نہیں پوچھ سکتے. مجھے صرف ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے، یعنی چیزیں تو بہت سی پوچھنی ہیں لیکن اب آپ اگلی دفعہ پروگرام میں آئیں گے، ابھی سے میں نے طے کر دیا کیونکہ آپ سے بات ختم نہیں ہو سکتی اتنی جلدی. تو تصویریں جب میں دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ سے بہت پیارا آپ کا خاندان ہے، اور آپ کی بیگم جو ہیں بہت ہی، یعنی کہنا چاہیے ایک لونگ کپل ہے آپ کا، تو بیگم بھی آپ کے کام میں شامل ہیں، ناظرہ صاحبہ جو ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا فون کٹ گیا. تو سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ظفر محمود صاحب ہیں جو کہ دہلی سے ہیں، اور ان کا جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے وہ بڑا اہم کام کر رہی ہے. آپ اگر میری فیس بک پر جائیں گے تو میں نے کچھ لنکس بھی ڈالے ہیں، آپ فیس بک لائیو پہ اس وقت تک دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف جو کام ہیں اور جو مختلف ادارے ہیں جس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے سوال پوچھا تھا، آپ بیگم کا نام سن کے فون ہی کٹ گیا آپ کا، تو اس قدر رعب میں تھے آپ.
نہیں سنا، نہیں
میں کہتی کہ ماشاء اللہ فیملی پیاری ہے اور لونگ بڑا کپل ہے، تو ناظرہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس کام میں شامل ہیں آپ کے ساتھ؟
جی نہیں، وہ بالکل الگ کام کرتی ہیں. انہوں نے دہلی میں دو اسکول قائم کیے ہیں، سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری، اور وہ ہر چیز ان کی اس میں اپنے خود کی ہے، اور پچھلے 20 سال اس کو ہو گئے، ایک کو تو اور دوسرے کو بھی قریب 8-9 سال ہو گئے. تو الحمدللہ تقریباً 1600-1700 بچے ہیں، اس کوئی 7500 کا اسٹاف ہے، اور فرنیلیا یہ وہ تو بہت بزی رہتی ہیں وہ اس کے اندر.
اچھا،
پوری طرح سے سمائی ہوئی ہیں اس کی.
تو ہم یہ کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی مجھے تصویریں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ پوری طرح سمائی ہوئی ہیں، تو ہم آئندہ اگلے پروگرام میں ان کو ساتھ لیں گے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ سے باتیں کریں.
ضرور.
لیکن یہ بتائیے مجھے، یہ علی گڑھ جو گئے تھے تو یہ کوئی لو میرج وغیرہ ان کے ساتھ ہوئی؟
جی بالکل ہی لو میرج ہی ہوئی.
اچھا،
وہ علی گڑھ میں ہی پڑھتی تھیں، وہ ایم اے میں انگلش میں تھیں، اس وقت میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر رہا تھا، لیکن میں سینئر تھا، تقریباً ختم ہو چکا تھا، میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے رہا تھا، وہ اسی وقت آئی تھیں. بہرحال یہ کہ وہ ان کی کامن فرینڈس تھے تو ان کے ذریعے ہماری ملاقات ہو گئی، اور والدین تو والد ان کے والد اور میرے والد دونوں وکیل، اور دونوں نیشنل لیول کے اوپر ملت کا کام کرنے میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو خوب جانتے ہی تھے.
اچھا،
تو دو چیزیں مل گئیں، اور اللہ کی مرضی بھی شامل تھی، تو الحمدللہ رشتہ بن گیا.
بہت خوب. اور اب تین آپ کے بیٹے ہیں جن میں سے دو باہر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، ختم ہی ہو رہا ہے، بلکہ چند سیکنڈ باقی ہیں. ایک شعر اقبال کا آپ بتا دیجئے جو آپ کی زندگی پہ صادق آتا ہو، آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں.
میری زندگی ایسا، بالکل اقبال تو میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور میری زندگی کیا، میں تو یہ پیغام ہی دوں گا آپ سب سامعین کو، سب بچوں کو، کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی.
اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں.
ڈاکٹر صاحب میں یہ پروگرام کا وقت بالکل،
ہم نے اپنی روح پھونک کی ہے.
بہت شکریہ.
اللہ کی صفات کو ہمیں اپنے اندر لانا.
جی تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.